Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर भी हम एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला। प्रकाश जी, मार्केट मंत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन।
वार्म वेलकम प्रकाश।
आमंत्रण के लिए धन्यवाद।
चर्चा शुरू करेंगे मगर श्रोताओं, आइए इससे पहले सुने सुर्खियां।
बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज, सेंसेक्स एड्स ओवर 170 पॉइंट्स, Nifty settles at 25,725. India is expecting over $200 billion AI investment in the next 2 years, says Union Minister Ashwini Vaishnaw. And global crude oil prices jump over 1.5%.
देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में उछाल, सेंसेक्स 170 अंक से अधिक बढ़ा, निफ्टी 25,725 पर स्थिर रहा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, एआई के क्षेत्र में भारत अगले 2 वर्षों में $200 अरब से अधिक के निवेश को आकर्षित करेगा और वैश्विक कच्चे तेल के दामों में 1.5% से अधिक का उछाल।
Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
श्रोताओं, आइए जाने कि आज हमारे प्रमुख शेयर सूचकांकों का हाल क्या रहा। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 173 अंक यानी 0.21% बढ़कर 83,451 पर बंद हुआ। उधर बात निफ्टी की करें तो निफ्टी भी 42 अंक यानी 0.17% बढ़कर 25,725 पर स्थिर हुआ।
Benchmark domestic equity indices today closed with marginal gains. Sensex climbed 173 points or 0.21% to close at 83,451. The Nifty also added 42 points or 0.17% to settle at 25,725.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। लाभ कमाने वाली कंपनियों में आईटीसी के शेयर 2.3% से अधिक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लगभग 2% और लार्सन एंड टूब्रो 1.8% से अधिक बढ़ा। सबसे अधिक गिरावट दर्ज करने वाली कंपनियों की अगर बात करें तो इटर्नल 1.5% से अधिक, टाटा स्टील और ट्रेंड के शेयर 1.3% और रिलायंस के शेयर 0.9% से अधिक गिरे।
Among the BSE sectoral indices, 20 out of the 24 sectors ended in positive territory. Among the gainers, PSU Bank surged over 2.3%, IT as well as industrials rose over 1.1% each, and services added nearly 1%. Among the laggard, metal dropped more than 0.9%, commodities decreased nearly 0.3%, and realty lost over 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,447 companies advanced, 1,756 declined, and 149 remained unchanged.
श्रोताओं, आइए जाने क्या है रुपए के सूरते हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 के मुकाबले रुपया मामूली रूप से गिरकर 90.67 रुपए पर बंद हुआ। दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक 97.18 पर चल रहा था।
सो हाउ डू यू सी द परफॉर्मेंस एट द एक्विटीज टुडे? दे हैव मैनेज्ड टू एंड इन द ग्रीन टुडे डिस्पाइट द वीक ग्लोबल हैंड। व्हाट इज द की मैसेज यू रीड इन द रेजिलियंस ऑफ सेंसेक्स एंड निफ्टी around the 25,700 mark?
Well, Rajesh ji, what has happened today is there was this whole lot of hysteria, so to speak, around AI. And it was having a big toll on the IT sector for the last, IT shares in a way.
Yes.
And what has happened is one of the major US companies has signed a MOU with one of the major Indian IT companies, wherein the Indian IT company would use the AI tools. So that has sent a very positive signal among investors that the Indian IT services companies, especially in the IT sector, are now quick enough, are getting quick enough to adapt to the new reality. And so there's this entire narrative, negative narrative around AI and its disruptions, in a way, slowed in a way.
So this is actually a part of what Ashwini Vaishnavji is also saying about India expecting over $200 billion AI investment. Perhaps this is part of that.
Well, if you see the AI landscape today, AI is here and now. It is no more an academic kind of a thing. It is here and now. And at the forefront of this entire movement, US has been at the forefront, followed by China. What India is doing now is, because AI technologies and tools and the models, they need hosting. And hosting needs data center, a huge kind of data center. India is positioning itself, when it comes to seeking investment, as a major data center. That's why if you see, if you recall the budget speech of the finance
minister,
we have given tax holidays to data centers. So the investment that the minister is talking about today would largely, should largely, would be going to building the data center. One of the major industrial house itself has announced a huge kind of investment.
So it's going to add positive sentiments to the market.
Well, positive sentiments, yes, but as I said, the changes are so swift and the model, we don't know how it's going to play out. So when it comes to market, market is always keeping its fingers crossed. Every day, new developments taking place. Technology is moving at a very fast pace.
Yeah, you mentioned how swiftly things are changing. Also changing is the fact, or rather the return of the foreign institutional investors to Indian equities. After several mixed session, today they turned into buyers in the cash market, and that boosted the market sentiment.
Well, yeah, that could be a technical market.
Whatever it may be,
but
they
it's
have
a good positive
that.
Sign. Yes. At least the flow outflow should have stopped. That's a good sign, but well, we need to build on that.
Okay, and also the positive sentiment concerning the India-US trade deal as we go forward is also adding to the sentiments. Investors view the agreement as broadly positive, particularly for export-oriented Indian companies.
On the day it was announced, you know, the Sensex really moved up quite sharply. But then the details are yet to come out. And it was a major relief for several sectors like textile and leather and apparel and some pharmaceutical chemicals. It was a major relief, auto exports. So it came because market doesn't like uncertainty.
Yeah. So before Prachi asks you the question, banking stocks were among the biggest gainers today. What's your take on that?
Well, banking is a proxy for the overall economic growth. And our banks have been doing well because now the balance sheets of our banks is pretty healthy. And it has of late come to be seen as one of the defensive sectors. And most of the banks, including the PSU banks, have been in the limelight. And some of the private sector banks also are doing well. Even the NBFCs are doing well. And as the consumption story unfolds, banking is a critical aspect of that story.
प्रकाश, एआई को लेकर के तो आज का हाईलाइट ही एआई है और अभी भारत में भी एआई इंपैक्ट समिट 2026 जो है अभी उचल रहा है, कल से आज हमारा दूसरा दिन है, तो इस पर तो बात करेंगे ही. लेकिन अगर हम क्षेत्र विशेष की बात करें तो आईटी के का जो उत्थान हुआ है उस पर बड़ी चर्चाएं हैं, बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है।
देखिए, एआई को हम किस तरीके से लेते हैं, एआई या एक इन्वेस्टमेंट, एआई के मॉडल्स हैं। अब जो हमारी जो समिट हो रही है इसका नाम है एआई इम्पैक्ट। तो इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि भाई हमारे आम शहरी की, हमारे आम गांव के आदमी की जीवन में और जो ज्यादा अफोर्डेबल तरीके से और किस तरह से वो इम्पैक्ट कर सकती है, वो इम्पैक्ट दो तरह के हो सकते हैं। और हमने ये कैसे चेष्टा करनी है कि जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव तरीके से आए और उसकी उसका जीवन में, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो आम नागरिक के जीवन में एआई से कुछ फायदा हो, ताकि हमें ये जो डिसरप्शन का माहौल है, या हमको ये देखना है, जैसे हमारा जो हम लोग पोजीशन कर रहे हैं अपने आप को कि हमारा भारत का जो मॉडल होगा यूनिक होगा। यूनिक किस मायने में होगा? इस मायने में होगा कि आम नागरिक की जीवन में एआई को से कैसे फायदा मिलता है।
इसी एआई को जोड़ करके अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक देखें, मैं उसी की बात कर रही थी, आईटी सेक्टर की मैं बात कर रही थी कि पहले हमने देखा कि काफी निराशा थी, आईटी सेक्टर में गिर रहा था, और अभी हम देख रहे हैं कि अचानक से मतलब कि उसमें धीरे धीरे जो है हमें पॉजिटिव एक देखने को मिल रहा है ना। आज भी लगभग 1% के अप्रोक्सीमेटली जो है आईटी ग्रो किया है।
मैं आपको क्या बताऊं, आईटी सेक्टर जैसे आपने जिक्र किया काफी निराशा रही स्थिति थी, लेकिन आज ही हुआ है जो आप कह रहे हैं ना, धीरे धीरे नहीं, आज हुआ है। वो जो एक कंपनी का नाम क्या लेना, उन्होंने जो साइन किया है उससे ये मैसेज चला गया कि हमारी भारतीय आईटी कंपनीज पिछड़ने वाली नहीं है, उसको कैच करेंगी और उनमें इतनी महारत है और काफी कंपनीज कैश रिच कंपनीज हैं, उनके पास अपने इतने रिसोर्सेज हैं कि वो इन्वेस्ट भी करेंगे और काफी लोगों ने अपने मॉडल बना लिए। आने वाले दिनों में आप देखिएगा इंडियन आईटी कंपनीज जो हैं अपना अलग से एक आपको रेवेन्यू गाइडेंस देंगी और दिखाएंगे कि हमारा एआई से इतना रेवेन्यू आ रहा है, बाकी जो ट्रेडिशनल मॉडल से इतना रेवेन्यू आ रहा है, ये ऑर्डर ऑफ द डे है, इसको हम अब धीरे धीरे आईटी कंपनीज। तो इसी माहौल में थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म आया है।
श्रोताओं, हम घरेलू बाजार की हमने बात की और भी उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन आइए इससे पहले हम जानें एशिया और यूरोप के बाजारों का हालचाल। एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांक स्थानीय नववर्ष के अवकाश के उपलक्ष्य पर बंद रहे। यूरोपीय बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। फ्रांस का कैक मामूली रूप से गिरा, जर्मनी का डैक्स नकारात्मक रुझान के साथ स्थिर रहा, जबकि लंदन के फुटसी की बात करें तो अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% से अधिक की बढ़त के साथ नजर आया।
Then न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, S&P 500 एंड बॉन्ड मार्केट्स वर क्लोज्ड यस्टरडे ऑन अकाउंट ऑफ प्रेसिडेंट्स डे। Moving on, Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron today held bilateral talks in Mumbai. The two leaders discussed strategic cooperation between India and France across key sectors including defense, security, trade and cultural exchange. Delegation level talks were underway when reports last came in. Several MOUs are expected to be signed. President of France Emmanuel Macron paid tribute to the victims of the 2611 Mumbai terror attacks at the historic Taj Mahal Palace Hotel during his visit to Mumbai, reaffirming solidarity with India in the fight against terrorism. In a message shared on social media, he said France stands with India in the face of terrorism, unity and determination, extending support to the family and loved ones of the victims. President Macron also interacted with prominent personalities from Indian cinema, highlighting the cultural ties between the two nations. What all are we expecting from the MOUs with France?
Well, as you mentioned, some of the critical sectors, strategic sectors that we are... what has happened is, India's position now is to focus on multipolar kind of a thing. In our strategy towards multipolar world, Europe holds very important position, a key position. And within Europe, France holds very important position.
Okay.
So visit of president, French president here is important, and coming on the back of the European Commission president on Republic Day and signing of the Indo-Europe trade deal, it sends a very important signal, not only bilaterally to the rest of the world as well, that, you know, it is not a bipolar, it's a multipolar world where different economies have their own strategic strength and aspirations, and we need to move together. So that way it sends a very important...
Bahuayami samarth ki baat.
Bahuayami samarth. Bilkul sahi farmaya aapne.
Moving on, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav has said that India is expecting over $200 billion AI investment in the next 2 years. Addressing a press conference on India AI Impact Summit 2026 in New Delhi today, Mr. Vaishnav said, "The summit is receiving a huge response with people arriving from every corner of the country." He said, "India will strive to build a consensus amongst global leaders on the proper and responsible use of AI so that it can be utilized for the benefit of the humanity." Mr. Vaishnav highlighted that there are real difficulties and hurdles in the AI ecosystem that must be addressed through a technical legal approach. He said these challenges cannot be resolved merely through regulations or by passing a law alone. Mr. Vaishnav said that India is set to host a series of technical sessions, case discussions and parallel policy dialogues focused on artificial intelligence during the summit. The minister said that global leaders, technology experts and policy makers will deliberate on the good, proper and responsible use of AI. He underlined that the government is focusing on reskilling, upskilling and creating a new talent pipeline to prepare the workforce for emerging technologies.
Right now we are working with the industry and academia on three fronts. One, reskilling and upskilling the existing talent which is there working the workforce. Two, creating a new talent pipeline. Three, making sure that the coming generations are ready for this new technology. All these three things are happening in parallel. So far, more than 100 colleges are there where the IT industry is getting their talent reskilled. Our future skills program, which we started 3 years ago, that is also deployed now for AI-based reskilling. So that's a constant endeavor that we are making.
The minister noted that India has the potential to emerge as a global hub for semiconductor design. He said the past year has been very encouraging for India's semiconductor mission, underlining that the design capabilities are the foundation of a strong semiconductor ecosystem. Mr. Vaishnav said that the design will be the primary focus for the next phase of this mission. Prakash, the summit is framed around the sutras of people, planet and progress. If you had to pick one concrete policy or initiative under each sutra that India must deliver in the next 3 years, let's talk about one sutra. What should that be?
Well, people. Okay. As the minister just highlighted, that the reskilling and the upskilling and is very critical to the unfolding or emerging technology. What we need to do is, in terms of infrastructure, you know, India has a large number of engineering colleges. I'm talking about besides the IITs. Now, all that we need to do is, we need to fix our education, have a relook the way we teach, because technology is moving very fast. So unless we keep pace with the unfolding technology, our educational institutions, engineering colleges, medical colleges,
Jeez.
Because technology cannot exist in isolation. If you want to really skill up people, so the start must happen there, even at the IITs. Even our IITs need to really scale up.
Ji.
Because the challenges and the opportunities are humongous.
जी प्रकाश, आपने बात की पीपल की, जो हमारे तीन सिद्धांत दिए गए हैं इस प्रभाव, ये जो आपने कहा अभी हमने बात की कि दिस इज इम्पैक्ट समिट, तो इस प्रभाव में जहां पर जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है वो लोगों को कर रहा है, फिर प्लैनेट है, और उसका जो प्रोग्रेस की बात की गई है, तो किस तरीके से हेल्थ केयर मुझे लगता है कि वन ऑफ द मेजर मतलब कि गेम चेंजर्स में से आ सकता है. तो एआई को अगर हम हेल्थ केयर से जोड़ करके देखें, लेकिन इसमें भी एक कैच है. कैच ये कि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए हेल्थ केयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है. तो एआई के आ जाने से किस तरह सुधार या उत्थान हमें भारत की ग्रामीण जनता के लिए देखने को मिलेगा, और क्या वो अफोर्डेबल होगा भी? या
तभी तो यही तो इम्पैक्ट की वो है, यही तो चर्चा हो रही है. ग्लोबल साउथ क्यों हम लोग बोल रहे हैं
जी,
कि देखिए अगर आप टेक्नोलॉजी को कुछ ही लोगों के पास रहने दीजिएगा तो समस्या बढ़ जाएगी
जी.
हमको ऐसी टेक्नोलॉजी को राइड करना है. वी नीड टू राइड सच ए टेक्नोलॉजी जिसका फायदा आम लोगों तक पहुंचे
जी.
उन लोगों तक पहुंचे ग्लोबल साउथ में, मान वरना तो ये के शेप एक मॉडल बन जाएगा
जी.
तो गैप और बढ़ जाएगा
जी.
हमको ये इंश्योर करना है कि ये जो एआई टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से हम लास्ट माइल में, जो लास्ट बिंदु पे जो खड़ा हमारा इंसान,
यानी कि कतार में जो सबसे
सबसे उस तक कैसे पहुंचे हैं अफोर्डेबल तरीके से, उसको नॉट ओनली हेल्थ केयर कैसे है, उसको एजुकेशन कैसे दें, उसको हेल्थ केयर कैसे दें, हमारे किसान भाइयों को हर चीज की एम्पावरिंग कैसे दें.
प्रकाश जी, हमने किसान भाइयों की बात की, तो कृषि क्षेत्र की बात करें तो सरकार एआई को कृषि से जोड़कर किस तरह के बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, अगर मैं आपसे मतलब कि सार में इस चीज को पूछूं तो?
नहीं, अभी तो पोटेंशियल है, अभी कर रही थी, अभी तो फिलहाल तो हमको एआई को इस तरह से मॉडल अपना लेना है कि हम किसानों तक पहुंचे
जी.
तो हमारे जो ड्रोन सिस्टम्स हैं, हमारे जो वेदर फोरकास्टिंग है, हमारे जो चैट बॉट्स बोलते हैं, अब चैट बॉट्स तो अंग्रेजी का शब्द है
जी.
उसको हम सब रीजनल लैंग्वेजेस में हमको करना पड़ेगा
जी.
जो आम लोगों के आम, अब चाहे वो आंध्र का किसान हो या पंजाब का किसान,
क्योंकि हमारा जो देश है वो भी कृषि प्रधान है, तो हमारी रीढ़ ही किसानी है.
तो भाई सही कहा, लेकिन उस जैसे बीज है, आपके फॉर्म है, आपका वेदर है, सारी चीजें तो किसान के लिए इम्पोर्टेंट है
जी.
प्रकाश, दिस समिट पोजिशंस इंडिया एज अ ब्रिज बिटवीन एडवांस्ड एआई इकोनॉमीज एंड द ग्लोबल साउथ. व्हाट स्पेसिफिक कमिटमेंट्स ऑन फाइनेंसिंग, compute access or capacity building should India push for on behalf of the developing economies?
Well, I don't know whether the developed nations will respond that much, but we must pressurize them that you have a responsibility towards global south. In any case, we should assume a leadership position by attracting investment, and as we said, if we are able to skill up people, we should handhold the countries of the global south as partners and put pressures as we used to do in WTO and other multilateral organizations.
Hmm.
So that kind of approach is required, where we send these messages to the developed nations that development of technology itself is not good enough. Unless it is used for the benefit of all.
Jee.
If you see, one of our catch lines in the global summit also is happiness to all.
Jee.
Happiness of all. So happiness of all includes global south as well.
Jee. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी से जोड़ना जरूरी है. श्री चौहान ने आज जयपुर में किसानों के डिजिटल साथी एआई लैस बहुभाषीय उपकरण भारत विस्तार को लॉन्च करने के बाद एक कार्यक्रम में ये बात कही. श्री चौहान ने बताया कि सरकार उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने, नुकसान की भरपाई करने और समेकित खेती को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रही है. साथ ही खेती, पशुपालन, मुर्गी पालन और मछली पालन को भी बढ़ावा देने की ओर अग्रसर है.
हमारा लक्ष्य है उत्पादन बढ़ाना, उसके लिए नई नई किस्में ICR फसलों की तैयार करना, उत्पादन की लागत घटाना, मैकेनाइजेशन तकनीकी का इस्तेमाल करके कम लागत में उत्पादन कैसे हो ताकि प्रॉफिट बढ़े, उसका प्रयास, किसान को उसके उत्पादन का दाम देना, इसलिए एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी की हमने कोशिश की है। मौसम की मार अगर फसल को बर्बाद कर दे तो नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से करते हैं।
भारत विस्तार का जिक्र करते हुए श्री चौहान ने कहा कि स्कीमों और नई प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी की कमी से अक्सर किसानों को नुकसान होता है। अब एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए किसान फसल पर आधारित वैज्ञानिक सलाह, मंडी के दाम, मौसम के अपडेट और अन्य जरूरी जानकारी पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी जानकारी किसानों को उनके मोबाइल फोन पर एक कॉल से मिल जाएगी। कितना मतलब आसान बना देगा ये भारतीय जो किसान है उनकी जीवनचर्या को।
जो आपने जिक्र किया, जिन मुद्दों का मंत्री जी ने भी जिक्र किया, उसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज हमारे भारतीय किसान के पास ये है, सामने ये है जो प्राइस डिस्कवरी है
जी।
उसको प्राइस डिस्कवरी जो है, अभी फ्यूचर्स मार्केट्स होती है, कुछ करते हैं, लेकिन वो परफेक्ट प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पा रहा। तो एआई में क्या होता है, आप हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस करेंगे
जी।
उसके ट्रेंड्स निकालेंगे
जी।
और आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस फसल में प्राइस अच्छा आने वाला है, तो किसान को वेल इन एडवांस पता चल जाएगा कि अगले सीजन में पूरे वर्ल्ड में गेहूं की मात्रा ज्यादा है तो क्या मैं चावल की तरफ रुझान दूं, क्या मैं दालों की तरफ रुझान दूं। तो ये सारा प्राइस डिस्कवरी सिस्टम है, जिसको मार्केट एनालिसिस बोल लो, एक पूरा एनालिटिक जो है सिस्टम्स हैं, वो इतना एडवांस हो जाएगा आपको प्राइस डिस्कवरी में, तो ये डिस्ट्रेस प्राइसेस का जो चैलेंज रहता है ये काफी हद तक दूर हो जाएगा।
और प्रकाश, मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूंगी कि हम जब भी किसान कहते हैं तो हमारे दिमाग में जो परिकल्पना बनती है कि किसान हल लिया हुआ, धोती पहना हुआ और खेत में हल चला रहा है ना, और इस तरीके की जब जो उत्थान किसान की जिंदगी में होंगे तो वो एक तरीके से पूरा जो इमेज है वो बदल जाएगा। आपका क्या कहना है इस पर?
वो आप थोड़ा, आप तो इतने नौजवान हैं और फिर भी आप क्या इमेज लेके घूम रहे हैं
जी?
अभी आजकल का किसान जो है वो जींस पहनता है
जी,
वो मोबाइल फोन लेके चलता है, जींस पहनता है, वो ट्रैक्टर पे चलता है।
छवि परिवर्तन,
छवि हो गई, परिवर्तन हो गया
जी।
और आप भी कीजिए, और आज का किसान बड़ा प्रोग्रेसिव है, हमें उसको एक अपने साथ मिला के।
ऑन दैट नोट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस गेन्ड टुडे। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 1.5% up at $67.59 per barrel, and WTI crude was also trading over 1.6% up at $63.73 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1.4% down at 1,53,090 rupees per 10 grams. Silver was also trading over 3.2% down at 2,33,480 rupees per kilogram a short while ago.
MCX में अप्रैल अनुबंध के लिए सोना 1.2% से अधिक की गिरावट के साथ 1,52,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च अनुबंध के लिए चांदी भी 3.1% से अधिक की गिरावट के साथ 2,32,450 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। प्रकाश जी, कार्यक्रम में आने और हमारे तमाम सवालों पे जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।
थैंक यू प्रकाश फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज राइज, सेंसेक्स एड्स ओवर 170 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 25,725. India is expecting over $200 billion AI investment in the next 2 years, says Union Minister Ashwini Vaishnaw. And global crude oil prices jump over 1.5%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Good night.